वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
तो आप सबका स्वागत है कौन सी यात्रा में? द्वारका यात्रा में। तो ये जो यात्रा है ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है शास्त्रों के दृष्टिकोण से। शास्त्र वर्णन करते हैं कि हर एक व्यक्ति को जीवन में यात्राओं में निकलना चाहिए। किसमें निकलना चाहिए? यात्राओं में। तो यात्रा ये जो शब्द है ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने गांव में है, शहर में है, और आजकल इंटरनेट में yatra.com भी है कि नहीं। तो यात्राओं से लेकिन व्यक्ति को यात्रा का असली जो उद्देश्य है, असली जो मीनिंग है, असली जो अर्थ है उससे वो ज्ञात नहीं है, व्यक्ति को पता नहीं है। तो जनरली यात्रा का मतलब है, यात्रा का मतलब है जर्नी करना, निकलना, ट्रिप में जाना, टूर में जाना। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है यात्राओं में जाना। किसको किसको अच्छा लगता है, हाथ ऊपर कीजिए। सबको अच्छा लगता है। तो लेकिन क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है, यात्रा में क्यों जाना चाहिए, जाके क्या करें? क्योंकि जनरली हर एक व्यक्ति यात्राओं में निकलता है, लेकिन यात्रा में जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो गोल है वो क्या होना चाहिए? कृष्ण के नजदीक जाने के लिए हम जा रहे हैं यात्रा में। क्यों जा रहे हैं? क्लोज टू कृष्णा, कृष्ण के नजदीक। इस संसार में लोग यात्राएं करते हैं लेकिन उनकी यात्राएं उनको कहां ले जाती है? कृष्ण से दूर। तो इसलिए ये कोई छोटी चीज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा का वास्तविक अर्थ पता नहीं है, उद्देश्य पता नहीं है, क्यों जा रहा हूं, यात्रा में जाके मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज का लाभ उठाना चाहिए, यदि व्यक्ति को ज्ञात नहीं है तो उसकी यात्रा असफल नहीं है। उसकी यात्रा कैसे है? कृष्ण एक बार जब अपने सारे रानियों के संग में द्वारका से कुरुक्षेत्र गए थे, तो वहां कुरुक्षेत्र में कृष्ण बैठे थे, बड़े बड़े टेंट्स लगाकर टेंट्स के अंदर बैठे थे कृष्ण, जहां उनकी सारी रानियां थी, देवकी भी थी, मदर और वसुदेव थे, यादवगण थे, बहुत सारे और हस्तिनापुर से पांडव आदि भी आ गए थे, तो वह सब मिल रहे थे वहां। तो कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, यशात्म बुद्धि कुनपेत्र धातु के सधि कलत्रा दिशु बहुम युजती यत्यर्थ बुद्धि सलिलेन करियचि जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा। जो व्यक्ति इस शरीर को केवल, जो शरीर कफ वात्र धातु से बना है, कफ पित्त और वात से, इसके परे इस शरीर में कुछ है नहीं, इस शरीर को अपने अपना स्वयं को ये शरीर मान लेता है, जो बल्कि मल मूत्र हड्डी और इन मज्जा आदि से बना हुआ है, जिसमें कफ वात पित्त आदि भरा पड़ा है, उस ऐसे घृणित शरीर को अपने आप को स्वयं मान लेता है कि मैं यह शरीर हूं। यशात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिश बहुमयुज्जति और स्व और धी मीन्स, और उसकी ये बुद्धि होती है अपनी पत्नी बच्चे इन सबको अपना मान लेता है, बहुमयुज्जति, और जिस गांव में जिस भूमि में उसने जन्म लिया है उसको पूजनीय मानता है, मेरा भारत महान या मेरा महाराष्ट्र महान है या फिर हरियाणा ओडिशा बंगाल यूपी बिहार राजस्थान गुजरात। तो जो व्यक्ति अपने भूमि को पूजनीय मान लेता है। यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन करीचित, और तीर्थों में जाता है किस चीज के लिए? केवल डुबकी लगाने के लिए। हाँ, तीर्थ में जा रहा हो और तीर्थ में जाकर मुझे केवल वहां का जो जल है उसमें स्नान करना ही मेरा उद्देश्य है, तो कृष्ण कहते कि ऐसा व्यक्ति स एव गो खरा हा, वो व्यक्ति क्या है? गाय के समान है और गधे के समान है।
तो इसलिए शास्त्र कहते हैं,
हरे कृष्णा,
हरी बोल, बैटरी खत्म है इसका। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, आप लोग नजदीक आ सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को यात्रा में जाने का उद्देश्य पता होना चाहिए, यात्रा में जाने का पर्पस पता होना चाहिए।
हरे कृष्णा। तो यदि
आवाज डिस्टर्बिंग है,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे लग रहा है आवाज मेरी सुनाई दे रही है।
हाँ,
ठीक है, इनफ है। तो यात्राओं में जाने का जो उद्देश्य है, यदि व्यक्ति को पता नहीं है और जाकर करना क्या है वो यदि पता नहीं है, तो उस व्यक्ति की यात्रा किसके समान है? गधे के समान है और एक गाय के समान है। तो इसलिए यात्राओं में जाना, व्यक्ति को प्रॉपरली उसकी जानकारी चाहिए, अनुभूति चाहिए और उद्देश्य को पता होना चाहिए। यात्रा शब्द तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी जीवन भर कई यात्राएं की हैं और कई यात्राओं के नाम भी सुने हैं। बताइए कौन कौन सी यात्राएं हैं? रथ यात्रा, दोल यात्रा, झूलन यात्रा, और कौन सी यात्रा?
चार धाम यात्रा
है, और बताइए, पद यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, दक्षिण भारत यात्रा है, रास यात्रा है। गीता में कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं शरीर यात्रा पिछते, शरीर की भी अपनी यात्रा है। तो हम इन यात्राओं में जाए ना जाए या ना जाए, लेकिन हमारे जीवन में एक यात्रा जरूर है, वो क्या है? अंतिम यात्रा है कि नहीं? कोई जाए ना जाए जो मर्जी करे, लेकिन व्यक्ति को एक यात्रा में तो जरूर भाग लेना पड़ेगा, उसकी अपनी खुद की अंतिम यात्रा। तो उस अंतिम यात्रा की तैयारी करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ, अंतिम यात्रा हमारी बिल्कुल सुव्यवस्थित हो। और कृष्ण क्या कहते हैं, अंतिम यात्रा कैसे होनी चाहिए? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंत काल में कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण होना वह हमारी यात्रा का परफेक्शन है, यात्रा की सिद्धि है। तो ये यात्राएं, यात्राओं में जाने का एक ये उद्देश्य भी है कि हम कृष्ण के नजदीक जा रहे हैं। कृष्ण के नजदीक जाने का मतलब है कृष्ण का रिमेम्बरेंस हमें बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? हम भगवान का स्मरण हमारा बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा संग, ऐसी यात्रा हमें कृष्ण के स्मरण से दूर ले जाती है, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उस यात्रा को क्या करना चाहिए? तुरंत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हाँ, तो इसलिए यात्रा जाने का प्रमुख उद्देश्य यही है। हाँ, यात्रा जो जा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? यात्री कहा जाता है, कहते ना, क्या कहते हैं?
यात्री
कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीन प्रकार के यात्री होते हैं शास्त्र कहते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है आत्मा का प्रवास, है ना। यात्रा को प्रवास भी कहते हैं, आप प्रवास कह सकते हैं। तो हमने अपनी यात्रा ऐसे नहीं कि कल हमने यात्रा शुरू की है दिल्ली से, नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड भ्रमिते, यात्रा का मतलब भ्रमण भी है, ट्रैवल करना। हमने कब से शुरू किया है? अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, अनादि काल से हम कृष्ण के नजदीक थे, वहां हमने भगवान को देखा, अरे कृष्णा आप क्यों इतना भोग कर रहे हो, आप क्यों इतने बड़े आसन में बैठे हो, सब आपकी सेवा में लगे हैं, मैं आपका स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। हाँ, कोई हमेशा नौकर बनना चाहता है क्या? नहीं। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है। तो भगवान के धाम में भी हमने क्या किया? भगवान की जगह लेने का प्रयास किया और हम ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ईश्वरोहम अहम भोगी बलवान अहम सुखी। जो आसुरी व्यक्ति है, आसुरी गुण जिस व्यक्ति में है, हिरण्यकश्यप जैसा, वो अपने आप को क्या मानता है, ईश्वर, भोक्ता या बलवान। हाँ, तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमने भगवान का स्थान ग्रहण करने का प्रयास किया, अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, इंजॉय करने का भावना, भोग करने की भावना। तो भगवान ने कहा, बेटा आपको अभी सिखाता हूँ, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करती है, दुर्गा जी करती है, उसका जो प्रतिनिधित्व है, तो ऐसी दुर्गा जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो क्या करती है, तुरंत ही निकट निवास करती है भगवान के पीछे, और जीव जो भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहता है उसके गर्दन को पकड़ती है। निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, जैसे कोई बिल्ली है और चूहा कुछ खेल रहा है, कई बार उसके हाथ से छूटने वाला है तो बिल्ली क्या करती है, तुरंत पकड़ लेती है। तो माया हमारी गर्दन को पकड़ लेती है, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे पकड़ती है और क्या करती है, जैसे आप देखो MCD के जो लोग हैं वो कई बार कुत्तों को पकड़ते हैं, घूमने वाले कुत्ते MCD का वैन लेके आते हैं और बोरा लेके आते हैं, बड़ा बड़ा बोरा, जिसमें आप आपके मिड डे मील में 100 किलो का आता है ना शुगर का बोरे, वैसे बोरे लाते हैं, कुत्ते को पकड़ा, बोरी के अंदर डाला, बांध दिया। तो उसी प्रकार से भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, वह हम जीवों को पकड़ लेती है और बोरे में डालती है। कौन सा बोरा, ये शरीर, ये इस बोरे में डाल देती है और इतना लंबे समय तक हम यात्रा में निकलते हैं, फिर वो यात्रा खत्म नहीं होती। और वो कौन सी यात्रा है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इतनी बड़ी यात्रा, उसका कोई स्टॉप नहीं है। तो एक्चुअली यात्रा में जाना मतलब इस यात्रा को क्या करना, बंद करना। कौन सी यात्रा को बंद करना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी की जो यात्रा है, जो मूर्ख व्यक्ति है वही इस यात्रा में भाग लेना चाहता है, जो अज्ञानी है इस भौतिक जगत में स्वामी मालिक भोक्ता बनना चाहता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस ऐसी यात्रा को क्या करना चाहता है, फुल स्टॉप, क्या देना चाहता है, फुल स्टॉप देना चाहता है। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यात्रा का असली उद्देश्य जानना चाहिए कि क्यों मुझे जाना है, क्यों जाना है यात्राओं में, जाके करे क्या, ये नहीं कि अभी दिल्ली में परेशान हो गए, वही परिवार वही घर वही ऑफिस वही मिड डे मील के लोग, बोर हो गए, थोड़ा सा निकलते बाहर, चेंज। क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हम परिवर्तन, सुख सुख की अनुभूति व्यक्ति कब करता है, जब बदलता है, बदलती है चीजें, एक मोबाइल से हम शांत नहीं रहते, चेंज करना चाहते, चेंज घर चेंज करना चाहते, कार चेंज करना चाहते हैं, मित्रों को चेंज करना चाहते हैं, वस्तुओं को कपड़ों को, कितनी चीजें चेंज करने में ही हम अनुभूति अनुभव करते हैं। लेकिन ये शरीर भी हम चेंज करते हैं, और जब इस शरीर को चेंज करने का समय आता है, बुढ़ापा मृत्यु, उस समय आनंद अनुभव नहीं करते, उस समय दुख हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि असली जो यात्रा है उसका उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण के नज़दीक जा रहे हैं, और उस जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थों को कहा गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है उन्होंने साल में कई यात्राओं में निकलना चाहिए, अपने घर परिवार इन सब चीज़ों को थोड़ा सा छुट्टी देकर बाहर जाए, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करें। क्यों करें, क्योंकि हम जब उसमें लगे रहते हैं तो हम बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं, अटैचमेंट बढ़ता है। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि कई ऐसे लोग हैं अपने घर से इतना प्रेम है कि उनको एक ही रूम में नींद आता है, दूसरे रूम में भेज दो तो नींद ही नहीं आएगा। तो बाहर जाना, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बाहर जाना उनके लिए बहुत कष्ट है, क्यों, अटैचमेंट, आसक्ति। जैसे हम अपने शरीर से आसक्त हो गए हैं, शरीर से इतना प्रेम करते हैं, शरीर से हमें निकालते समय यमदूत हमें निकालते इस शरीर से बाहर जो इतना कष्टप्रद है, तो हमें बहुत कष्ट होता है। हाँ, व्यक्ति मृत्यु के समय अपना मल मूत्र आदि त्यागता है, आंखें सफेद हो जाती हैं, हाँ कष्ट अनुभव करता है। तो उसी प्रकार से हम जब बने रहते हैं अपने स्थान में, घर की वस्तुओं में, घर के जो मेंबर्स हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस आसक्ति को निकालने के लिए क्या करो, धाम में जाओ, तीर्थ स्थानों में जाओ, ये जो आसक्ति आपकी कम हो जाएगी धीरे धीरे भगवान की ओर आसक्ति बढ़ेगी, प्रेम लगाव बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन इसलिए है। इस जगत में प्रेम करने के कोई व्यक्ति है, एक योग्य व्यक्ति है, वो कौन है? कृष्ण है, उनके अलावा नहीं है। कृष्ण के अलावा इस संसार में किसी से भी हम प्रेम आसक्ति लगाव रखते हैं वो अंततः हमें दुख ही देने वाला है, ये निश्चित रूप से है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी, आसक्ति ही कष्ट का कारण है व्यक्ति के जीवन में। हम छोटी छोटी चीज़ों से आसक्त हैं। हमारे मित्र थे कुछ साल पहले, उनके उंगलियों में कुछ एक बीमारी हो गई थी जो फैलने वाली थी पूरे शरीर में, तो डॉक्टर ने कहा उंगली को काट दो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अमेरिका जाके ऑपरेशन करूँगा। वो अमेरिका गया नहीं, लेकिन धीरे धीरे फैल गया, उसका हाथ ही काटना पड़ा। तो मतलब हम अपने शरीर के छोटी छोटी चीज़ों से इतना आसक्त हैं, एक ना एक दिन ये शरीर हमसे छूटने वाला है। तो इसलिए यात्रा का मेन उद्देश्य है, हम अपनी यात्रा बहुत लंबी समय से शुरू किए हैं, हमें पता नहीं कब से शुरू किया है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, शब्द कौन सा यूज करते हैं, अनादि, जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है। तो इस यात्रा को हमें लंबे नहीं खींचना है, जन्म मरण माला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गीत में, किस यात्रा को लंबा नहीं खींचना है, जन्म मृत्यु की यात्रा को हमें रोकने के लिए क्या करना है, इस यात्रा में निकलना है। कौन सी यात्रा में निकलना है? धाम यात्रा, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका। लेकिन उसका भी कैसे निकलना है वो भी शास्त्र हमें वर्णन करते हैं। तो तीन प्रकार के जो यात्री हैं उनका वर्णन शास्त्रों में आता है कि तीन लोग यात्रा करते हैं। एक तो है टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं भुक्त, मतलब भोगी, और दूसरा है भक्त, भक्त मीन्स जो भगवान से के शरणागत हैं, और तीसरा है भगवान। कितने लोग यात्रा करते हैं? तीन। कौन कौन से हैं लाउडली? भोगी, भुक्त, दूसरा है भक्त, भगवान। तीन बी। जैसे मैं वृंदावन यात्रा में जाता हूँ तो भक्तों को बोलता हूँ कि तीन बी से सावधान रहो वृंदावन में। क्या है तीन? एक है बंदर, दूसरा है बाबा जी, और तीसरा है ब्रजवासी। इन तीनों के आप यदि बहुत नज़दीक जाते हो तो आप अपराध ही कर बैठोगे धाम के प्रति, कृष्ण से दूर जाओगे। इसलिए वृंदावन जाते समय व्यक्ति को तीन चीज़ों का सावधान रहना चाहिए। क्या है वो तीन चीज़ें? बंदर, बाबा जी और ब्रजवासी। ब्रजवासी मीन्स वहाँ जो निवास करने वाले जो ब्रज के लोग हैं वो कृष्ण के प्रेमी हैं। हम जाते हैं माइक जगत में हम रहते हैं, दिल्ली मीन्स नरक है, आगरा टू दिल्ली रोड वो नरक टू नरक रोड है, हेल टू हेल रोड कहते हैं भक्त हमारे, हेल टू हेल रोड। लेकिन बीच में आपने थोड़ा सा लेफ्ट ले लिया तो आप बच सकते हो, उस रोड से बाहर निकल सकते हो। तो उसी प्रकार से हम जब माइक जगत में रहते हैं दिल्ली जैसे नारकीय स्थान में, तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस स्थान से जब हम जाते हैं धाम में जाते हैं तो वहाँ के जो भक्त हैं, जो भगवान के स्वाभाविक जो भक्त हैं धामवासी, आप किसी स्थान में जाते हो तो वहाँ तीन चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। जैसे वृंदावन है, सोचिए वृंदावन धाम है या द्वारका धाम है, तो वहाँ जाकर धाम को आपको जानना चाहिए और धामी को जानना चाहिए और धामवासी को जानना चाहिए। कितनी? तीन चीज़ें कौन सी हैं? धाम है, धामी मीन्स कौन? वहाँ का जो भगवान है। धामी मीन्स जैसे भगवान ने गीता में कहा देही नो स्मिन्यता यथा देहे, देह और देही, देही के देह के अंदर रहने वाला उसको देही कहते हैं, तो आत्मा इसके अंदर रहता है। उसी प्रकार से धाम और धाम का प्रमुख कौन है? धामी मीन्स भगवान, वहाँ के जो विग्रह हैं, वहाँ के जो महत्वपूर्ण डिटीज हैं उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे हम जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथपुरी धाम है उसके बारे में जानना चाहिए, वहाँ के धामी कौन है? जगन्नाथ जी। और धामवासी तीसरा कैटेगरी क्या है? धामवासी। तो ये आवश्यक है। तो हम जाते हैं दिल्ली से आते हैं और फिर इन तीनों चीज़ों को हम बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं अपनी आँखों से। शास्त्र कहते हैं कल्प वृक्ष मयवन चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंच रसम, चिंतामणि मय भूमि कल्प वृक्ष मयवन। जो भगवान का धाम है, चाहे वो वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ आदि है या रामेश्वर आदि है, ये क्या है? ये भगवान का धाम, ये जगत का स्थान नहीं है। वो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत से उस स्थान को लेके आते हैं। कल हम सुनेंगे द्वारका के बारे में डिटेल कि कैसे द्वारका का प्राकट्य हुआ, द्वारका कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से आया ये स्थान। हाँ, तो जो धाम है वो इस जगत का पार्ट नहीं है। वो ना यूपी में आता है, ना गुजरात में आता है, ना किसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो कहाँ से आता है? सीधा आध्यात्मिक जगत से आता है। तो उसी प्रकार से जो हम जब जाते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान का धाम चिंतामणि है, और वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, डिजायर ट्री। उस वृक्ष के नीचे बैठोगे तो आप जो भी इच्छा करोगे उसकी पूर्ति होगी, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। हम कहते वृंदावन जाते हैं, कई पेड़ों के नीचे बैठा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। गोस्वामी गण हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे रहा करते थे वृंदावन में। उनके पास कोई घर नहीं थे, लेकिन वही वृक्ष उनकी भावनाओं को समझकर उसी प्रकार का वातावरण क्रिएट करते थे। तो इसलिए वो भगवान के जो धाम है, वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। चर्म चक्ष देखे तार प्रपंच रसम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी चमड़ी की आंखों से देखता है इन तीन चीजों को, कितनी चीजों को? तीन। कौन सी तीन चीजें? धाम, धामी, धामवासी। आप भूलिए नहीं, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, मैं एग्जाम लेने वाला हूँ बाद में। कौन सी तीन चीजों से अपनी चमड़ी से की आंखों से देखता है? धाम, धामी और धामवासी। तो प्रपंच चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम। चैतन्य चरितमृत कहता है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से देखता है तो वो भौतिक ही नजर आती है उसको। वहाँ के लोगों को भौतिक ही देखेगा, वहाँ का वातावरण भी उसको भौतिक नजर आएगा, कोई दिव्यता महसूस नहीं होगी। तो इसलिए तीन प्रकार के जो यात्री हैं, यस तो जो ये तीन चीजें हैं,
चाबी किसके पास है? रूम की चाबी है, और किसी का रूम की चाबी है?
मेरे पास। बाद में करेंगे ना, सामान है ना, दे विल रैकेट।
ओके ओके, ठीक ठीक।
तो यदि कोई व्यक्ति देखता है धाम को या इन तीन चीज़ों को अपने भौतिक आँखों से, तो उसको गलती नज़र आती है। जैसे कोई वृंदावन जाएगा और वहाँ कहेगा यहाँ तो सारे सुअर ही नज़र आते हैं, यहाँ सारी इतनी गंदगी है, ट्रैफिक है, क्योंकि वो दिल्ली का चेतना को वहाँ लेकर गया है। दिल्ली अभी उसके दिमाग में ही है, गंदगी क्या है, वहाँ से ढोके हुए आया है। दिल्ली में जो चश्मा लगाया है कलरफुल, वो वैसे की वैसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। हे अर्जुन, जो जिस भावना से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी प्रकार से मैं आदान प्रदान करूँगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंदगी को कैरी करके हमें नहीं आना है लेकर, यहाँ धाम में जब जाते हैं उसको वहाँ ही छोड़ना है। और हम धाम क्यों जा रहे यात्रा में? क्योंकि जो दो चीज़ों के लिए जा रहे हैं हम, एक तो हम धामवासी बनने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा क्या है, धामी को अपने साथ लेने के लिए जा रहे हैं, भगवान को अपने साथ लेके आने के लिए जा रहे हैं। देखो अर्जुन ने भी यात्रा की थी द्वारका की थी कि नहीं? दुर्योधन ने भी यात्रा की। महाभारत में हम देखते हैं उनकी यात्रा से पहले, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो ये दोनों यात्रा में निकले, द्वारका की यात्रा। तो क्यों यात्रा में निकले थे, क्या उद्देश्य था उनका? उद्देश्य था, महाभारत का युद्ध होने वाला था तो वो चाहते थे कि अभी अलग अलग भारतवर्ष के सारे राजाओं को उन्होंने अपनी अपनी ओर अपने अपने पार्टीज में डिवाइड किया था, लेकिन देखा कि अभी यदुवंश बचा है, द्वारकाधीश बचे हैं, जिनको हम दोनों ने अप्रोच नहीं किया, ना पांडवाज ने ना कौरवा ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, आप द्वारका चले जाओ, और यहाँ तो दुर्योधन तो किंग ही था, वो तो गया, वो तो चाहता ही था। जाते ही देखा कि भगवान सो रहे हैं, तो भगवान आराम कर रहे थे, तो दुर्योधन पहले पहुंचता है और वो जाके भगवान के सर की ओर बैठता है। हाँ, ये आसुरी लक्षण है, सर के ऊपर जाके। हम कहते हैं ये व्यक्ति मेरे सर में बैठा हुआ है, टेंशन देता है, परेशान करता है। तो जो आसुरी है, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान के सर में बैठना चाहते हैं। हाँ, दुर्योधन उसी प्रकार से था, भक्त नहीं था, शरणागत नहीं था। और अर्जुन जब जाते तो अर्जुन कहाँ बैठते जाकर? चरणों में। भागवतम कहता है सारंगानाम पदाम्बुजम, सारंग भक्तगण भगवान के सदैव चरणों का आश्रय लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये दोनों गए और कृष्ण उठे, तो जनरली व्यक्ति उठता है तो सामने देखता है पहले, और कृष्ण कई बार हम देख भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सामने देखोगे। तो कैसे संभव है कि कृष्ण उठते ही अभक्त का दर्शन करेंगे? कृष्ण किसको देखेंगे? भक्तों को ही देखने में आनंद लेंगे। भगवान के भक्त सुबह उठते ही किसको देखना चाहते हैं? भगवान को देखना चाहते हैं या और दूसरे भक्तों को देखना चाहते हैं? आप दक्षिण भारत की यात्रा में जाओगे तो वहाँ जितने मंदिर हैं, भगवान जब सुबह उठते हैं, रंगनाथ है या वरदराज आदि कई स्थानों में, वहाँ उठते ही गाय का दर्शन करते हैं। भगवान डिवोटी है, क्या है? भक्त है। और कई सारे भक्त होते हैं फ्रंट, सबसे पहले किसी का दर्शन करते हैं वहाँ डेटीज, तो वो सबसे पहले गाय का दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हाथी का दर्शन करते हैं। हाँ, मैं जब था कुछ महीने पहले साउथ में, तो देखा हर मंदिरों में सुबह सुबह तो हाथी का क्यों देखते हैं, और हाथी तुरंत उनको प्रणाम करता है। प्रणाम करेगा, अपने सुंड ऊपर करके शंख जैसी ध्वनि निकालेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि हाथी भी क्यों इस प्रकार का कार्य कृत्य करता है, क्योंकि भगवान उससे ये सिखाना चाहते कि इतना बलवान से बलवान प्राणी भी मेरे शरणागत है। हाँ, तो मनुष्य को क्यों नहीं शरणागत होना चाहिए? हाँ, कितने फुट के हैं हम, हाइट कितना है हमारा, वैसे देखा जाए क्या बल है हमें, है ना? शरीर, कोई कंट्रोल नहीं हमारा शरीर पर। तो उसी प्रकार से जब कृष्णा उठे तो उन्होंने अर्जुन को देखा और अर्जुन से बात करना ही चाहे तो इन्होंने कहा, दुर्योधन भगवान मैं पहले आया हूँ, हे कृष्णा आप मुझसे बात करो, यहाँ देखो जरा। हाँ, गुस्सा होके बोल रहा था। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि हम एक उद्देश्य के लिए आए हैं। तो उन्होंने भगवान ने पूछा क्या उद्देश्य है? महाभारत का युद्ध होने जा रहा है तो हम आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने कहा दो चीज़ें मेरे पास हैं, एक तो मैं हूँ और एक मेरी शक्ति है। मैं स्वयं हूँ और शक्ति क्या है उनके पास? नारायणी सेना, यादवों की जो नारायणी सेना है, जो कोई इस जगत में कोई भी ऐसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो विनाश कर सकता हो, ऐसी यादवों की सेना थी, नारायणी सेना, भगवान नारायण है कृष्ण, तो चूज करो आप। तो दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ, ये अर्जुन मांग लेगा नारायणी सेना पे, मैं क्या करूँ अकेले कृष्ण को लेकर? हम वही करते हैं, मंदिर में भगवान के लिए नहीं जाते हम, जब भगवान के लिए नहीं करते हैं। हाँ, हम साधु संग भगवान के लिए नहीं करते, धाम में भगवान के लिए नहीं जाते। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सब कुछ तेरा चेकबुक मेरा, इसलिए हम जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, ये दुर्योधन की मेंटेलिटी है। ये किसके फॉलोअर्स हैं? दुर्योधन के शिष्य हैं। हाँ, हमें किसका शिष्य बनना है? अर्जुन का। अर्जुन भगवान के गए और दुर्योधन ने भगवान की सारी शक्ति को मांग लिया, मटेरियल एनर्जी एक प्रकार से। तो हम भगवान के पास जाते, भगवान कहते भगवान आप आल्टर में बहुत सुंदर लग रहे हो, उधर ही बैठो, मेरे साथ मत आओ, मेरे घर में भी मत आओ, लेकिन आपका आशीर्वाद दो ताकि मेरा सुख संपत्ति और ये सब चीज़ें बढ़े। हाँ, तो हम दुर्योधन के समान ही हैं। भगवान को उन्होंने द्वारका में ही छोड़ा और उनकी सेना को लेकर महाभारत का युद्ध के लिए आया और राजा बनने का स्वप्न देखा। तो भगवान को छोड़कर भगवान की वस्तुओं को लेकर वो राजा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हम भी अपने आप को धोखा देते हैं जब हम कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। चाहे बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से हम महान हो सकते हैं, बड़े दिख सकते हैं, लेकिन हम क्या है, धोखा देते हैं हम अपने आप को। तो उस प्रकार से जब दुर्योधन ने सारी नारायणी सेना को मांगा, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, भगवान हमें आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। भगवान ने तो पहले बोला था दो चीज़ों में से आपको चूज करना है, एक तो मैं हूँ और दूसरा मेरी सेना है। मैं रहूँगा लेकिन मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्रास्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा इसका क्या लाभ है, क्या करेगा ये? हम भी सोचते भगवान का क्या लाभ है मेरे जीवन में, कुछ चेंजेस तो नहीं होगा, क्या सपोर्ट मिलेगा मुझे? नहीं, तो वही है हमारी स्थिति। लेकिन अर्जुन ने कहा कृष्ण आप शस्त्र उठाओ या ना उठाओ कोई फर्क नहीं है, आप चाहिए हमें बस। तो ये भक्त हमेशा भगवान को अपने जीवन में चूज करता है। तो इस प्रकार से यात्रा का मतलब है हाँ कि हमें धामवासी बनना है, और जो धामी हैं उनको क्या करना है अपने हृदय में वापस लेके आना, इसलिए हम जा रहे हैं। रथ यात्रा का मतलब ही क्या है, कृष्ण लैया संगे चलो। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण को लेकर आप वापस ले जाना, कृष्ण को रथ यात्रा का मतलब जाना और कृष्ण को हृदय में बिठा के ले जाना अपने साथ। उसी प्रकार से यात्रा में जाने का मतलब ही है कि कृष्ण को हमारे साथ वापस लाने के लिए जा रहे हैं। तो कैसे वापस ला सकते हैं हम कृष्ण को, बताइए। हर एक व्यक्ति को आंसर देना है, अभी हमारे पास समय कम है। कैसे हम ला सकते हैं कृष्ण को, हर एक व्यक्ति को एक एक शब्द बोलना है यहाँ से। प्रभु जी बताइए कैसे आप लाओगे द्वारका से कृष्ण को अपने साथ दिल्ली, कुछ भी बोलो जल्दी। भक्ति, नाम, प्रार्थना, माता जी, भक्त, भक्तों के द्वारा, भक्ति से माता जी बोलिए पीछे, आप बोले रिमेम्बरेंस, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा। कैसे लाएंगे आप भगवान को अपने साथ दिल्ली, आचरण में परिवर्तन, भक्ति, प्रेम, भक्ति, पीछे कैसे आप लाओगे कृष्ण को द्वारका से, भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण पोटो में नहीं आएंगे अच्छा है, स्तुति, भक्ति, भक्ति, आप भक्ति प्रेम से बच्चों। तो कई उपाय हो सकते हैं, तो हम सीखेंगे कि क्या क्या उपाय हैं जब हम पहुंचेंगे, जिसके द्वारा आप अपने हृदय में कृष्ण को कैप्चर करके बांध के दिल्ली ला सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे।